ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਤ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਕੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਹਨ, ਉਲਟ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੌੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫੇਕ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਗੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਉਂਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਲਏ ਸਮਝੋ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਣ ਪਏ ਉਦਾਸੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਆਪਣਾ ਵਸਤਰ ਹਰ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਤਾਈਂ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਪਿਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਢ 'ਤੇ ਚੋਟ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਅਗਰ ਮੁੱਢ 'ਤੇ ਚੋਟ ਵੱਜ ਗਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ, ਕੌਣ ਤੁਮੇ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਤੁਹਾਰਾ, ਕੌਣ ਮਾਰ ਕਵਨ ਸਵਾਲ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਪਾਨ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਡੋਂਡੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, मैं किसे नूं आखण ही नहीं आया कि ना मेरा लवो। साडे इतिहास विच बड़ा खूबसूरत लिखिया होया है, जब आप गुरु नानक पातशाह का प्रकाश होया ता उस वेले दौलतां दाई ने दो कौतक देखे, उनते सारी नगरी ने कितने कौतक देखे सन, पर लिखे दो कौतक दौलतां दाई ने देखे। पहला कौतक ए सी कि आप प्रगट होए हन ते अपनी एक उंगल आपने आसमान वल कीती हुई सी, ते दूसरे मुख विचों ए शब्द दाई ने सुने, हूं तेरा तेरो नाम, मैं तेरा हां, तेरा ना जपान आया हां, और कोई मेरा मकसद नहीं है संसार ते आमन। इस करके आपने फरमाया, साच कहूं अपनी गल में नहीं करांगा, भावें कुछ हो जाए अपने मैं होंदा प्रगटावा नहीं करांगा। अते यही कारण है, पूछे एक साधु ने, बाद विच एक फकीर ने पूछे तुहाडा नां की है, ते गुरु नानक साहब कहंदे ने अजे ही मेरा नां रह गया है, अजे ही कोई मेरा नां है, हुण मैं जिंदगी दे आखिरी सालां विच हां, अजे भी तैनूं ये कोई शक पै गया है कि मेरा कोई नां है। अते एक गुरु नानक पिता दी सब तो पहला उपदेश है, कोशिश होवे कि सानू अपना नाम बार बार न सुनाना पवे। ये एक पिता ने सानू रस्ता दसिया, अते जो मुख सिद्धांत दिता, साच कहूं अरदास हमारी, मैं अपनिया साथियां नू सिर्फ एक गल दृढ़ करा रहा हां, अरदास करन दी जा। अते जेड़े लोकी कहंदे ने अरदास की लोड़ नहीं है, जेड़े कहंदे ने अरदास करनी नहीं चाहिए, जेड़े कहंदे ने अपने आप सुन लैंदा है, या जेड़े कहंदे ने ये कोई रस्ता की होया भाई सारे खड़े होके अरदास करदे हन, उन्होंने साडा मुढ़ला सिद्धांत नहीं पता। मुढ़ला सिद्धांत ये है अरदास हमारी, या जिन्होंने पता कि जिन्होंने पता नहीं है कि असी सिर्फ कड़ा प्रसाद नू प्रसाद क्यों कहने, क्यों लिखिया रहत मर्यादे च होर कोई प्रसाद प्रवान नहीं है, क्यों कोई आदमी जान बुझ के मन मुखता नाल शनिचरवार नू छोले वरतान लग पवे, मंगलवार नू पूड़ियां वरतान लग पवे, शुक्रवार नू बर्फी वरतान लग पवे, आम तौर पर ऐसे लोग करते हैं। ये महाराज ने एक हुक्म दे दिता कि कड़ा प्रसाद ही प्रवान है। इसका यही कारण है कि जिस वेले अरदास हुंदी है, अरदास साडा मुख सिद्धांत दे नाते सानू समझा दिता गया है, जिवें कड़ा प्रसाद कोई चीज छड़न वाली नहीं है, सारी दी सारी असी गुरु ग्रंथ साहब दे हजूर अपने मूह च पा लैने हां। इसे तरह जो उपदेश इत्थे होया है मैं ग्रहण करके जा रहा हां, छड़ के नहीं जा रहा। यह है कड़ा प्रसाद, ये प्राचीन पंथ प्रकाश च लिखिया है, ये कलगीधर पातशाह नहीं कहा, इन्हों कुछ समझ लिया जे जिवें कोई बच्चा नौजवान माई भाई आके कि गुरुद्वारे अंदर ब्रेकफास्ट दिता जा रहा है, कई कह लग जाते हैं ना कि सिख सर्व वेरी नाइस ब्रेकफास्ट, कि सिख जड़े ने बड़ा अच्छा नाश्ता देने, कोई नाश्ता नहीं है, ये तो गुरु ग्रंथ साहब के हजूर असी दो हाथ जोड़ के दो हथा लैके जो सानू वस्तु मिली है सारी की सारी छक लैने, सिर्फ एकड़ा प्रसाद ऐसा है जिस विचों कोई चीज तुसी देख लो छड़ी नहीं जाती, सारी की सारी ग्रहण करने जी कि रह भी जाए वह भी असी अपने हथा नाल मल लैने। यह सी कड़ा प्रसाद का गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने समझाया, इस करके संगत च कड़ा प्रसाद वरताया जाता है कि सब कुछ मैं ग्रहण कर रहा हाँ, छड़ के नहीं इत्थे जा रहा। जो कीर्तन होया है, जो शब्द होया है, जो वाक आया है, जो विचार हुई है, इसमें मैं ग्रहण कर रहा। इसे करके अरदास साडा जरूरी अंग बन गया, ताकि कोई सिख अरदास विच सावधान होके ऐसा महसूस ना करे कि कोई इत्थे क्रिया हो रही है, कोई कर्म हो रहा है, कोई इस थान से एक्टिविटी हो रही है। अरदास साडा मुढ़ला सिद्धांत है, इस करके महाराज ने अरदास की महिमा आप दसी, आप समझाई। एक गल होर, यह जी असी अरदास भाई साहब रोज गुरु ग्रंथ साहब के हजूर सावधान होकर करते हैं, असी भी सावधान होंने। यह अरदास अज तो तकरीबन 240 साल पहला बनी। फिर कमाल है कौम, यह कौम मर्यादा प्रस्त है, यह कौम कर्मकांडी नहीं है। सिख कौम मर्यादा प्रस्त है, जेड़ी मर्यादा एक बारी बन गई उसने इसने उलंघया नहीं है। 1748 जे ठीक तारीख दें तो सारे पंथ ने बैठ के यह जी अरदास हूं भाई साहब ने करनी है, अज जरा ध्यान सुनिया जी, भावें हमेशा ध्यान सुनने, ये 1748 सारे पंथ ने बैठ के कलू कहारे तो बाद, छोटे कलू कहारे तो बाद अकाल तख्त के उत्ते सरबत खालसा दे विच ये अरदास सुनाई गई, पढ़ी गई, की गई। फिर उस तो बाद इस अरदास अंदर किसी ने एक अक्षर भी तब्दील नहीं किया। कैसी अच्छी कौम है कि इतना साल इसमें संभाल के रखी बैठी है, भावें कोई कितना कवे तुम आप पता है कि तुम चिट्ठियां पाते हैं, प्रबंधकों को भी पाते हैं, सानू भी पाते हैं, अरदास यह शब्द पा दो जिमें एक बारी किसी चिट्ठी पाई अते बड़े जोर न चिट्ठी पाई, बड़े अपने इस तरह लाल कि जिमें अरदास शब्द ना पाए तो असी सारे नाराज होवांगे। जिसले साडे कोल चिट्ठी आई शब्द ये सन जिन्ना टैंकां नाल मुकाबला करते हुए अपनियां कुर्बानियां दित्तियां उन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोले जी वाहिगुरू, अते कहन लगे ये अरदास शब्द पाओ क्योंकि 84 च होया सामने टैंकर नाल मुकाबला होया। असा उन्होंने सिर्फ इतनी बेनती की आख्या मन गए अरदास जो बनी है पहली एहतियात यह की है अरदास के अंदर ना समा है ना स्थान है, अरदास के अंदर ना स्पेस है ना अरदास के अंदर टाइम है, अरदास के अंदर यह सर्वव्यापी है, त्रैकाल है, किसी वेले कोई किसी समय के नाल नियत नहीं हो सकती। आप क्योंकि सानू अरदास बनाने वाले गुरु को सोझी लैन वाले दस गए ने, जिन्ना नाम जपया, जिन्ना वंड छकया, जिन्ना देख चलाई, जिन्ना तेह हवाई पाव, जे उस वेले ऐसा होया गुरुद्वारियां दी पवित्रता लई धर्म हेत, अज भी जे कोई धर्म हेत कर रहा है तो अरदास दा वो हिस्सा है, अरदास तो बाहर नहीं है। अज कोई आखे टैंकां नाल, कल कोई रॉकेट्स नाल करेगा हमला, कल कोई किसी होर नवे तरीके नाल ले आवेगा, तो फिर तो अरदास दिनों दिन अपने आप कोई ना कोई सज्जन वधान कठान लग पवेगा। जो अरदास दे ठीक अर्थन ये तो फिर खत्म हो जाएंगे क्योंकि अरदास दे ठीक अर्थ ने पटीशन। असी रोज महाराज के अगे खड़े होके सारे पंथ वालों हथ जोड़ के एक पटीशन करते हैं, अखीर जो मंगते हाँ जिस तरह कोई अच्छा वकील, अच्छा पलीडर, अच्छा एडवोकेट एक पटीशन बनाता है जिसनों अर्जदाश्त कहते हैं, असी रोज वाहेगुरु अगे गुरु ग्रंथ साहब के हजूर खड़े होके एक अर्जदाश्त करनी हाँ कि यह पंथ नूं दई, यह संसार नूं दई, ताकि सारी दुनिया के अंदर वाहेगुरु धर्म का जयकार हो सके। यह है साड़ी अरदास का मूड। इस करके अगर कोई आखे कि अरदास नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अरदास अपने हिरदे विच हुंदी है, वह फिर साडे इस मुढ़ले भाव को समझ नहीं रहा। तीसरी चीज अरदास कैप्सूल है। सियाने लोग, पढ़े लिखे लोग, इतिहासकार लोग एक लोहे का लैके कैप्सूल उस दे विच पा देंदे हैं इतिहास। यह संसार का एक तरीका है, भावें पैरिस होवे, भावें लंडन होवे, भावें दिल्ली होवे। इंदिरा गांधी ने एक बारी तुम्हें याद होएगा कि कैप्सूल के अंदर, लोहे के कैप्सूल अंदर सारा हिंदुस्तान का इतिहास पा के लाल किले के हेठा दब दिता, आख्या गया 1000 साल बाद कढ़ना। पर सानू पता लग गया कि उस औरत ने उस कैप्सूल के अंदर इतिहास नहीं पाया, अपने टब्बर का इतिहास पाया है। ख्याल ये सी जिले हजार साल कोई पटेगा देखेगा यह समझेगा कि इतने सवाए नहरू चो सवाए इन्होंने खानदान चो कोई नहीं है जनता का राज आ गया। उन्होंने कैप्सूल पट लिया कैप्सूल पटिया तो खोलिया उन्होंने सचमुच ही लिखा सी जेड़ा उस दिया हिंदुस्तान का इतिहास नहीं सी उस दे खानदान का इतिहास सी। इस करके कहते ने कैप्सूल हुंदा है उस दे विच इतिहास बंद कर देना अते पंथ ने बड़ी सियानत की थी कैप्सूल के अंदर सारा सिख इतिहास पा दिता ते सिखां दे हिरदियां विच दब दिता। हुण कोई कड नहीं सकदा हुण किसे भी कोई ताकत नहीं है कि इस नूं छेक सके वधा सके कड सके। इहदा एक एक शब्द जो है उनते बिरतहान नाल सुन वाला है अते उसनूं फिर समझण वाला भी है। सारा सिख इतिहास कैप्सूल दे विच पा के इस अरदास विच बंद कर दिता है ताकि कीर्तन तो बाद विचार तो बाद पांच मिनटों के अंदर असी सारा इतिहास एक बार अखां सामने दौड़ा के हिरदे की शक्ति पैदा करके इतों जाइए। ये एक कारण है अरदास के अंदर आपने इस ढंग में वरत्या है। ढंग यह है कि पहली गल जी किसी भी चंगे कार्ज में खासकर आनंद कार्ज अंदर तुसां देखिया होएगा भाई साहब जिस वे शुरू करते हैं तो आखते ने तीन चीजा का सहारा लै रहे हाँ इस चंगे काम को शुरू कर। बस यह भी अरदास की बड़ी महत्ता है कि सानू समझाया प्रायोरिटी फिक्स करो पहला गल कि कहनी है फिर पिछों कि कहनी है पहला कि करनी है पिछों कि करनी है यह भी सानू पता होना चाहिए। यह नहीं कि साडा कोई पिछम ही ना हो पहला ही कोई ना हो पहले तो पिछों की गल सानू समझ होनी चाहिए। इस करके जिसले आनंद कारज हुंदा है असी एक गल सारी संगत के सामने आखने महाराज के हजूर के सामने कहने असी तत् दे पुजारी नहीं हाँ असी तथ दे पुजारी हाँ असी एलीमेंट के पुजारी नहीं। जिसले गुआढ़ी का विआह हुंदा है ना तो वो तत् इकट्ठा करते हैं तत् आप जानते हो पानी हवा अग्नि आकाश ये तत् इकट्ठा करते हैं। तुम देखिया होगा कभी किसी गुआढ़ी का भरा का विआह हुंदा देखिया होगा उत्थे पानी का कड़ा होगा आकाश कड़े दे विच होगा अग्नि बाली होगी अन्न रखिया होगा सतनाज रखे होंगे वो तत् दे पुजारी हैं। सानू गुरु ने समझाया तत् का पुजारी नहीं होना तू तथ का पुजारी होना है तू सच का पुजारी होना है। इस करके शब्द गाया जाता है कि अस गुरु पिता तू तन है मैनू तू तत् विचों कढ के तथ वल लाया अपने वल लाया। इस करके अरदास मुढ़ली साड़ी यही है कीता लोड़िए कम सो हर पै आखे ना अग्नि ना आकाश नू ना हवा नू ना पानी नू कभी आवाज नहीं देनी। जिस वे आवाज देनी है कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए जिन्हें भाई साहब हूं अरदास करेंगे तो देखना कहेंगे प्रथम सब तो पहला भगवती सिमर कह जो वाहेगुरु तेरी शक्ति का प्रकाश है तेरी शक्ति जहूर है तेरी शक्ति हर थां ते है उसनू असी पहला सिर नवाने हैं कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए। अते दूसरे पुकारन दा राह यह रखना है अपने शब्दां च नहीं पुकारना क्योंकि अपने शब्द हमेशा कमजोर होंगे अपने शब्द हमेशा टेढ़े होंगे अपने शब्दों च हमेशा खुदगर्जी होंगी है अपने शब्दों च बोलन वाले हमेशा किसी न किसी वल ख्याल रहता है। इस करके दूजी तुक महाराज ने दी कि कीता लोड़िए कम सो हर पै आखिए कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। मैं तैनू पुकार रहा हां शब्द राही सतगुरु तेरे ही शब्द राही तैनू पुकार रहा मैं कोई होर शब्द नहीं लै रहा कोई होर शब्द का सहारा नहीं लै रहा। अते तीसरे संतां संग निधां जे स्वाद लेना है किसी ने अमृत वांगू ते संगत इकट्ठी करे संगत दे मूंह च पाए संगत नूं नाल लैके टुरे ये साढ़े तीन मुख अंग हो गए वाहेगुरु
शब्द ते संगत जिथे तिने इकट्ठे होन अरदास करो पूरी हो जाए। यह है तासी अरदास वाहिगुरु पुकारने गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख संगत सारी खड़ी कर लैनी आ तन होवेगा गुरु हरगोबिंद पातशाह जिन्हों किसी भी संसार के अंदर किसी वस्तु की लोड़ नहीं है। कभी कभी संगत च कहते सन आप अज सारी संगत खड़े होके हरगोबिंद अरदास करे। हुण अंदाजा लगा लो जे आप मेरी पीढ़ी का मालिक है आप संसार का मालिक है दो जहानों का मालिक है वह भी कहता सारी संगत नूं खड़े होके हरगोबिंद अरदास करो। इस दे अर्थ ये होए कि कभी किसी मनुख कोलों घर विच बैठ के यह कह के अरदास कर कि मेरा कार्य हो जाए ऐसा नहीं होन देना। इस करके अरदास साडे अंग बन गया। पहला पिछली भगौती नूं अते फिर अरदास की पौड़ी बड़े ध्यान नाल सुनी कि गुरु नानक लई तिहाए सिर्फ गुरु नानक पिता के नाम नाल गुरु है। फिर गुरु की जोत अंगद गुरु ते अमरदास उन्हीं जोत अंगद में चली गई गुरु बन गया। फिर किसी गुरु के नाल तुसी देखोगे पहला गुरु नहीं लिखिया अमरदास अंगद गुरु ते अमरदास रामदास वही सहाय अर्जन हरगोबिंद उथे गुरु अर्जन नहीं लिखिया हरगोबिंद हरगोबिंद जी किया ताकि किसी वेले यह ख्याल ही पैदा ना हो जाए कि गुरु दस हन। यह ख्याल सिखा में दृढ़ हो जाए गुरु एक है जामे दस हन। इतों फिर तुसा देखिए कई लोगों ने फायदा उठा लिया यारह बना ले बारह बना ले तेरह बना ले पंद्रह बना ले। जब अरदास एक बड़ी जोर दी आप गुरु पिता ने सानू समझा दिता गुरु एक है। जे रामदास पहला नहीं गुरु लाते हर गोबिंद पहला गुरु नहीं लाते हर राय पहला गुरु नहीं लाते हर कृष्ण पहला गुरु नहीं लाते तो ये अज का कौन कोई इंसान है जो अपने नाम गुरु ला के ये आखे कि मैं गुरु का रूप हाँ। यह है अरदास का मुढ़ला सिद्धांत जो सानू समझा के चले गए। दूजी गल अगलिया दो पौड़ियां सानू समझाई कि किसे होर चीज का ध्यान धर के वाहिगुरु नहीं बोलना। क्या जिंदी वारी सिर चुकाइए पंथ दिया उन्हां विद्वानां नूं जिन्हां दा नां ही नहीं है कि ना अरदास बनाई है उन्होंने आख्या किसी होर चीज का ध्यान धर के वाहिगुरु नहीं बोलना तिना की कमाई का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। हुण होर समझ सानू आ गई कितनी कमाई है पंजां प्यारियां दी चार साहबजादियां दी चाली मुक्तियां दी पर नां नहीं लिया। अते कई अनजान इत्थे शाबाश है ज्ञानी अर्जन सिंह जी नूं शाबाश है भाई गुरबचन सिंह जी नूं कि अरदास मर्यादा वाली कर रहे ने पर कई थां ते तुसां देखिया होएगा कि वह कभी गुरु साहबजादियां दे नां लैणा शुरू कर देंदे ने कभी प्यारियां दे नां लैणा शुरू कर देंदे ने। तो मैं उन्होंने कहा भी चाली मुक्तियां का भी नां लै फिर जे तू चार साहबजादियां का नां लिया तो चाली मुक्तियां का नां क्यों नहीं लैंदा। उस विचारे को पता ही नहीं चाली मुक्ते है किहड़े हन। इस वास्ते सानू समझा दिता गया कि कभी भी अरदास अंग सवाए वाहिगुरु ते गुरु तो किसे होर दा नाम नहीं लैना। कई लोग कह लग पैंदे ने भाई कन्हैया जी कमाई का ध्यान करके बोलो जी भाई कई बार किसी अपने ही ऐसे जरा उन्हों का बुजुर्ग होंगे वह नाम लैके रखो जी वाहिगुरु। ये दो पैरे आपने सानू दिते किसे वेले भी ये नहीं आखना कि बंदे का मनुख का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। ये अगलिया दो पौड़ियां आपने सानू दित्तियां ने। उस तो बाद फिर सानू दस्या ने कि सारे जगत के गुरुद्वारे ये भी नहीं कहना कदी सिर्फ सीट ऑफ अथॉरिटी जड़िया ने पंज ये बाकी जिने गुरुद्वारे ने भावें वह थाईलैंड का है भावें वह कुआलालंपुर का है भावें वह लंडन का है सारे गुरुद्वारे उतों की जो मर्यादा है उस गुरुद्वारे अंदर जो संगत जुड़ी हुई है उन्होंने ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। पहला कमाई का ध्यान करना फिर हर गुरुद्वारे का जिथे संगत जुड़ रही है अंदर इच्छा होंगी है कि हर गुरुद्वारे अंदर संगत जुड़े इस करके ध्यान धर के बोलने वाहिगुरु। बिल्कुल ऐसा नहीं कहना कि आज ननकाणा साहब तो लैके पर्यंत हजूर साहब तक गुरुद्वार ध्यान धर के सारे गुरुद्वारे जिथे गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कीर्तन से संगत जुड़ी है उसका ध्यान करना है। तीसरा पैरा है। चौथा पैरा अरदास का यह है पंथ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਾਏ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਏ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦੇਈ ਰਚਿਆ ਵੀ ਕਰੀ, ਤੇ ਕੀ ਉਲਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਲੋ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹੇ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਚਿਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਚਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰਚਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਖੜਕੂ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੋਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਲਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਨੁਸਖਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਮੇਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੋ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼, ਨਾ ਲਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਲ ਪਵੇਗੀ, ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜੋ, ਅੱਗ ਬਲ ਪਵੇਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਵੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? दूसरा दरवेश बोलिया मिल जाए तो शुक्र, ना मिले तो सब्र। ते दूसरा दरवेश जरा उच्ची अवस्था से कह लगा, दरवेशा ये तो मेरे गली के कुत्ते भी करते हैं, ये तो मेरे गली के कुत्ते भी करते हैं, उन्होंने जो मिल जाए मुंह च लैके उस बोटी के टुकड़े में चुप करके खाते रहते हैं, शुक्र है ना मिले तो गली के किसी किनारे च बो रहे हैं, ये अवस्था हुई। तो अगले ने पूछा तुम की करते हो, कह लगा जे मैं मिल जाए तो वंड के छकदा हाँ, तो जे ना मिले तो सबर में रहा हाँ। यह है दरवेशों की कौम, यह लिखे पंथ प्रकाश अंदर कि सारा पंथ दरवेशों की कौम है। जे इन्हों चार दिन के बाद दो प्रशादे भुख्या सिखा मिल जान, जमीन ते रख लेंगे ने, तो जमीन ते रख के कहते ने दे तवाजा भुखा कोई, आओ देख त्यार गुर होई, उस समय बैरी के नावे परमीत संतान छुकावे। ते नादिर शाह पूछते कर दी की ने, आप जो नहीं खादा तो आप की करते ने, जो दुश्मन को खवा देता कहता बचे तो आप खले।